त्रिशान पहाड़ के ऊपर खड़ा था और नीचे की तरफ देख रहा था। संध्या आरती के बाद सभी लोग धर्मशाला में लगने वाले लंगर में खाना खाने के लिए बढ़ रहे थे। उनमें आकांक्षा और जानवी भी थीं। उन दोनों को देखकर त्रिशान बिजली की फुर्ती से नीचे आया और दबे पांव उन दोनों के पीछे चलने लगा। आकांक्षा ने उसे अपने पीछे आते देख लिया। राजवीर जी के थोड़ा आगे जाते ही आकांक्षा पीछे मुड़ी और गाते हुए बोली,
जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, देखे धर यार ध्यान किधर है।
उसे अचानक यूँ पीछे मुड़ते देख जानवी भी हैरानी से पीछे पलटी और अपने सामने त्रिशान को देखकर जानवी ने कहा, कसम से यार सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है जब कोई इतनी शिद्दत से स्टॉक करता है। इतने वेहले हो क्या तुम? कोई कामधाम है भी कि नहीं, या सारे दिन इधर उधर ताका झाकी ही लगी रहती है? मैं तुम दोनों को स्टॉक नहीं कर रहा था, त्रिशान ने अपने बालों में हाथ फिराकर बोला। झूठे कहीं के, जानवी और आकांक्षा एक साथ बोली। उनकी बात सुनकर त्रिशान मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगा। मैं यहाँ घूमते घूमते बोर हो गया था, फिर तुम दोनों दिखाई दी तो पीछे आने लग गया। सुना है यहाँ का लंगर बहुत टेस्टी होता है, क्या मैं तुम दोनों के साथ चल सकता हूँ? बात क्या है त्रिशान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हो? देखो बाद में पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा, जो बात है अभी बता दो। आकांक्षा ने उसे घूरते हुए देखा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों भी ना खुद को इतना भाव देना बंद करो। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं इधर आ गया। अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना है तो आ जाओ, वरना मैं अकेले ही चला जाता हूँ, कहकर त्रिशान आगे बढ़ने लगा। जानवी और आकांक्षा उसके पीछे पीछे आ रही थी। उन दोनों को ही उसकी हरकतें काफी अजीब लग रही थी। इन सबके बीच राजपुरोहित जी दूर से उन तीनों को देख रहे थे। त्रिशान अभी बच्चा है, वो ज्यादा लोगों के बीच नहीं रहा, इसलिए उसे नहीं पता कि सामने वाला कैसा हो सकता है। उसकी ये मासूमियत कहीं उसके लिए कोई मुसीबत ना बन जाए माता रानी, राजपुरोहित जी ने त्रिशान की तरफ देखकर कहा। उन्होंने उसे बचपन से पाला था, इसीलिए वो उसके व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो बहुत आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेता था। जानवी और आकांक्षा मंदिर की धर्मशाला में पहुंचे। वहां पर एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था जहां सब लोग लाइन से जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। राजवीर जी भी आदमियों की लाइन में बैठे थे। वहीं उनकी नजर त्रिशान पर पड़ी जिसके हाथ में थाने से भरी हुई थाली थी। ये क्या इतना ज्यादा खाता है? जानवी ने आंखें बड़ी करके कहा। हाँ ये नॉर्मल इंसान नहीं है ना, तो हो सकता है कि उसको खाना भी ज्यादा चाहिए होगा, आकांक्षा ने सामान्य तरीके से जवाब दिया। जानवी पिछली बार हमने इसे भेड़िया कहा था तो इसे बुरा लग गया था, हमें उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे भी यही लगता है, लेकिन ये हर वक्त हमारा पीछा क्यों करता रहता है? इसने रिवांश पर भी हमला किया था, कभी कभी मुझे इस पर डाउट होता है कि कहीं ये कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहा, आकांक्षा ने त्रिशान की तरफ देखकर बोला जिसका पूरा ध्यान खाने में लगा था। इसके मासूम चेहरे को देखकर लगता तो नहीं कि ये कोई प्लानिंग कर सकता है क्या? इसने रिवांश की मदद करने के लिए भी कहा था। जानवी और आकांक्षा वहां खाना खाने के बजाय खड़ी होकर बातें कर रही थी। जैसे ही राजवीर जी की नज़र उन पर पड़ी उन्होंने इशारे से उन्हें बैठने के लिए कहा। जानवी और आकांक्षा भी वही महिलाओं की लाइन में बैठकर खाना खाने लगी। त्रिशान खाना खाते हुए उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। मैंने रिवांश को सरीजा का पता तो दे दिया था, लेकिन वो उसके पास गया होगा क्या? दादू भी ना, उन्होंने मुझे अपना पूरा इंट्रोडक्शन देने दिया होता तो अब तक इन लोगों को मुझ पर विश्वास हो गया होता। इस बार वो मिला तो उसे सबसे पहले एक मोबाइल गिफ्ट करना पड़ेगा ताकि कम से कम बात तो हो सके, त्रिशान ने अपने मन में कहा। उसने यहाँ आने से पहले रिवांश को अपनी दोस्त अलीजा का पता दिया था जो कि सूरज की रोशनी में बाहर निकलने में उसकी मदद कर सकती थी। अलीजा एक जादूगरनी थी। पहले तो रिवांश को उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर जैसे तैसे करके उसने अपने मन को मनाया और उस जादूगरनी से मिलने के लिए गया। उसका घर जंगलों से शिमला के दूसरे छोर पर स्थित जंगलों में था। रिवांश उसके घर पर पहुंचा। वो घर जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर बना था और लकड़ी का बना था। घर को लकड़ी के मोटे डंडों की सहायता से जमीन के ऊपर खड़ा किया था। वो जगह काफी अजीब थी, वहाँ चारों तरफ एक विशेष तरह की गंध फैली हुई थी। रिवांश ने अपना नाक बंद किया और आगे बढ़ा। ये कैसी जगह पर भेज दिया है उसने हमें, पता नहीं यहाँ हमारा काम हो पाएगा या नहीं। हमें नहीं लगता कि कोई भी चीज़ हमें सूरज की रोशनी में जलने से बचा सकेगी, सोचते हुए रिवांश धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। तो आखिर तुम यहाँ आ ही गए? उसके सामने से एक लड़की की आवाज आई। रात का समय था और हॉल में ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन वैम्पायर होने की वजह से रिवांश को वहां देखने में दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि देखने में सिर्फ 19 या 20 साल की नजर आ रही थी। उसके काले लंबे बाल उसकी एड़ियों को छू रहे थे। देखने में वो लंबी पतली थी और चेहरे का रंग गौरा था। उसने पूरा नीचे तक काला फ्रॉक पहना था जैसा कि अक्सर पुराने जमाने में ब्रिटेन की क्वींस पहना करती थी। लेकिन मेरी शक्ल देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं 19 या 20 साल से ज्यादा की नहीं हूँ, और रही बात शक्ल की, शक्ल से तो तुम भी देखने में सिर्फ 24 या 25 साल के नजर आ रहे हो, लेकिन तुम्हारी असली उम्र क्या होगी राजकुमार रिवांश? उस लड़की के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। बोलते हुए वो रिवांश के बिल्कुल पास आ गई। अच्छा, तो आप हमारा नाम भी जानती हैं। लगता है त्रिशान ने आपको हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। जब आप जानती हैं कि हम आपकी तरह एक सामान्य इंसान नहीं हैं, तो फिर आप हमारी उम्र क्यों पूछ रही हैं? रिवांश ने जवाब दिया, पर तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं एक इंसान हूँ? और सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो भी तो सामान्य नहीं है, तो फिर तुमने मुझे कैसे सामान्य समझ लिया? मेरा नाम अलीजा है और मैं एक इंसान नहीं, जादूगरनी हूँ, अलीजा ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। क्या आप भी हमारी तरह मर चुकी हैं? रिवांश ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरी उम्र 120 साल है। अपने बनाए पोशंस और कुछ विशेष जादुई ताकतों से मैंने अपनी उम्र को रोक लिया है। अगर मेरा इंटरव्यू लेना हो गया है तो जिस काम के लिए आए हो उसके बारे में बात करते हैं। बोलते हुए अलीजा रिवांश का हाथ पकड़कर उसे उस कमरे के सामने बने एक कमरे के अंदर ले जाने लगी। रिवांश ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारे अजीब अजीब सामान पड़े हुए थे जो कि निर्जीव होने के बावजूद हिलडुल रहे थे। ये अलीजा के जादू का ही कमाल था। पूरे कमरे का अच्छे से मुआयना करने के बाद रिवांश ने कहा, त्रिशान ने आपको बता दिया होगा कि हम एक पिशाच हैं। हम सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ सकते। क्या आप हमारी इसमें कुछ मदद कर सकती हैं? हम चाहते हैं। रिवांश ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि अलीजा ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में एक लॉकेट रख दिया।